ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के इस बड़े गहन और सुंदर विषय पर हमारे साथ आदरणीय बहुत प्यारी सी उषा दीदी, आज हम उनका तहे दिल से करतल ध्वनि से और दो हाथ ऊंचा करके उनका बहुत सम्मान करते हैं। सबसे पहले हम पुष्प द्वारा बहनों को निवेदन करती हूं कि उनको सत्कार करें। आज की शुभ घड़ी बहुत सुंदर, समय सुंदर, मौसम सुंदर, स्थान सुंदर, साथ में आज का विषय वो भी बहुत सुंदर। और जो स्पष्टीकरण करने वाली हमारी दीदी है वो भी इतनी सुंदर। कारण हम सभी जानते हैं, आज का जो विषय है वर्तमान आधुनिक जीवन में गीता का महत्व, क्योंकि आज तक तो हमने केवल गीता को पठन रटन कर दिया है और वह केवल रटन करने से, पठन करने से, श्लोक कंठस्थ करने से हमें क्या मिला है, क्या प्राप्ति हुई है, वो तो हम सब नजर कर रहे हैं। आज हमारी प्यारी दीदी हमें गीता के विषय पर इतना स्पष्ट, सरल, सटीक व्याख्या करेगी तो हम उस दीदी का बहुत शॉर्ट में परिचय तो बहुत विस्तृत है पर हमें उनका सुनना है। प्यारी उषा दीदी जो बचपन से इस ज्ञान में चले हैं, 45 इयर्स से बाबा के घर में संपूर्ण समर्पित रूप में जीवन जी रहे हैं, 15 साल बॉम्बे में और हैदराबाद के अलग अलग सेंटरों में, सेवा स्थान शहरों में सेवा किया, देश विदेशों में बहुत सुंदर सुचारू रूप से सेवाएं आपने की है। पिछले 30 साल से आप माउंट आबू और फिर शांतिवन मुख्यालय में आप सेवारत है। आपके अंदर इतनी विशेषताएं हैं जो विशेषताएं किसी और में नहीं है। वो एक विशेषता बहुत सुंदर है कि कोई भी विषय को इतना स्पष्ट आप कर सकते हैं। तो आपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और अलग अलग उद्योगों में मैनेजमेंट कोर्स शुरू किया, बहुत समय तक आपने वो कोर्स कराया है। आप मूल गुजराती पर अफ्रीका में आपने जन्म लिया, वहां पढ़ाई पढ़ी और हमारा ये सौभाग्य है कि हम आज उनको सुनने वाले हैं। आज का जो विषय है, जो भारत में रामायण और गीता का इतना पठन पाठन हो रहा है, कथाकार इतना कथा कर रहे हैं, आज इनका रहस्य उद्घाटन उनके मुख कमल से सुनेंगे। समय क्या है, हमारी स्थिति क्या है, जो व्यक्ति हो गए हैं वो कौन है और उसने क्या कहा, परमात्मा क्या बोल रहे हैं, उनके मुख कमल से हम ये सब उद्बोधन सुनेंगे। तो मैं प्यारी उषा दीदी को निवेदन करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य शुरू करें। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अनुबेन, बहुत सुंदर तरीके से आपने परिचय दिया। आज का जो विषय है, वर्तमान समय में गीता ज्ञान की आवश्यकता। मैं समझती हूं यहां बैठे कईयों ने गीता को पढ़ा होगा, समझने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन कभी कभी लोग समझते हैं कि वर्तमान समय में हमारे सामने इतनी चुनौतियां हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने स्ट्रेसेस हैं, इसमें गीता को कैसे यूज किया जाए, क्योंकि यही समझा है कि गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया एक युद्ध के समय। उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में कैसे है। श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान सर्वोच्च माना गया है, और इसलिए सर्वोच्च माना गया है क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र पुस्तक है जिसमें भगवान हुआ जाता है, फर्स्ट पर्सन में। और अर्जुन के प्रति युद्ध के समय, और इसलिए व्यक्ति आज के युग में आत्मसात नहीं कर पाता और यही सोचता है उसकी उपयोगिता हमें क्या है। परंतु अगर अर्जुन का कैरेक्टर देखा जाए तो अर्जुन एक योद्धा था जिसने कई युद्ध अकेले हाथ जीता, परंतु महाभारत का समय जब आया तो वह इतना उदास, हताश, निराश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, अर्जुन का आत्मविश्वास कम हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान ने जब गारंटी ली थी, विजय आपके निश्चित है, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा, जो ऐसी मनस्थिति हो गई। दोनों में से एक भी नहीं था तो फिर उसने युद्ध करने के लिए मना क्यों किया, और आज के संदर्भ में उसको हम कैसे जोड़ सकते। मनुष्य जीवन को अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन भी एक संघर्ष है, हर वक्त इंसान युद्ध कर रहा है, कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम से लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। जीवन के कई संघर्षों को तो हमने पार किए, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास, हताश, निराश हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, और उस समय शायद अपनी प्रार्थना में वो भगवान के सामने यही कहता है कि हे प्रभु, ये युद्ध कब तक? I don't want to fight anymore. बहुत हो गया, लड़ लड़ के मैं थक गया. कहता है कि नहीं कहता है? वही महाभारत वाली स्थिति है. इसीलिए गीता का ज्ञान आज के परिप्रेक्ष्य में वो बहुत सटीक और उपयोगी सिद्ध होता है कि हर इंसान को इस संघर्ष में विजयी होना है. और विजयी होने के लिए या सफलता को प्राप्त करना है, सक्सेसफुल होना है, तो सक्सेसफुल होने के लिए उसको ये गीता का जो निर्देश है भगवान द्वारा दिया गया, अगर उसको आत्मसात करने लगे, उसको फॉलो करने लगे, तो जीवन के अंदर हर संघर्ष में वो विजयी हो सकता है. जीवन जीने की कला गीता सिखाती है. श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान ने सर्वश्रेष्ठ निधि दी है जीवन के लिए, क्योंकि ये गीता का ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया, ये हम तक कैसे पहुंचा, इस बात को थोड़ा सा समझ ले कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए. लेकिन आज मनुष्य को उसकी उपयोगिता क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि उन्होंने अपने मन की कल्पना से एक कथा को निर्मित किया, एक कथा के रूप में इस गीता का ज्ञान दिया. जो महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में कहते हैं, जब वो गणेश जी का आवाहन करते हैं तब कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो, यह ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ है, परंतु उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं अपने मन की कल्पनाओं के विस्तार से. मैंने ही वेरी ब्यूटीफुली एडमिट किया हुआ है कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला है, लेकिन जो मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूं, ये मैंने अपनी एक मन की कल्पना के माध्यम से उसको रखा है, इसलिए शायद लोग उसको आत्मसात नहीं कर पाते. भावार्थ ये है कि जैसे मान लो कि आज एक बच्चा हो और बच्चे को मुझे एक ज्ञान की बात सिखानी है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ज्ञान इतना ही है, सच बोलो. परंतु मैं रोज सुबह उठ करके उसको उपदेश देना शुरू करूं तो शायद वो बच्चा समझ नहीं पाएगा इसके मर्म को. परंतु अगर मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं और उस कहानी में एक सच का पात्र, एक झूठ का पात्र लेती हूं और ये उसको स्पष्ट करती हूं कि झूठ का मार्ग कितना आसान है, लेकिन उसका फाइनल डेस्टिनेशन सक्सेस नहीं हो सकता है, उसका अंतिम परिणाम हार है, जिल्लत है. जब वो प्रत्यक्ष हो जाता है तब वो मुंह उठाने के काबिल नहीं रहता है। सच का मार्ग शायद कठिन होगा, चैलेंजिंग होगा, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स रोड़े के रूप में आएगी रास्ते में, लेकिन उसका अंत या अंतिम परिणाम बहुत सुंदर होगा। ये बात उसको कहानी के रूप में मैंने स्पष्ट किया, वो कहानी उस बच्चे को हमेशा याद रहती है। और इसलिए जब जीवन में ऐसा समय आता है, जब उसको चुनाव करना है कि मैं झूठ का रास्ता लूं या सच का रास्ता लूं, एक द्वंद में होता है, एक युद्ध में होता है, और उस समय उसको ये कहानी याद आ जाए और वो हिम्मत करके सच का रास्ता अपनाता है, उस कहानी के माध्यम से वो इतना तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो ही जाता है कि मेरे सामने अनेक चैलेंजेस आएगी, रास्ता सहज नहीं होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट को देखते हुए वो हिम्मत करता है कि भगवान उसी का साथ देता है जो इस रास्ते पर चलता है। और ये बात को स्पष्ट समझते हुए वो जब कदम उठाता है, सच बोलता है, बहुत सारी परीक्षाएं उसके सामने आती है, लेकिन फाइनल जब विजयी होती है तो उस समय उसकी खुशी का पारावार नहीं है। और हमेशा के लिए उस बात को जीवन के अंदर वो अपना लेता है। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने भी ये बात बहुत स्पष्ट रीति से एडमिट किया कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला है, लेकिन अगर वो ज्ञान मैं सीधा देने का प्रयत्न करूं तो शायद आज के मनुष्य उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उसको समझाने के हिसाब से उन्होंने एक कथा का निर्माण किया जिसको कहा महाभारत की कथा, या दूसरे शब्द में कहे तो हर भारतवासी की कथा, जहां पांडव भी है, कौरव भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है, बुराई शायद अधिक है, जिसके सामने उसको युद्ध करना है, लेकिन भगवान का साथ तभी अनुभव भी कर सकेगा और अंतिम विजय उसी की होगी। ये बात महर्षि वेद व्यास जी ने इस कथा के रूप में कहा। अब समझना ये है कि जब उन्होंने ये कथा के रूप में उसको रचा तो इतने इंटेलिजेंट थे महर्षि वेद व्यास, जो एक ही कथा में उसने 5 कथा समा ली, एक ही कथा में। कौन सी? एक व्यक्ति की कथा भी है अर्जुन के रूप में, एक व्यक्ति की मनस्थिति की कथा भी है, एक पारिवारिक कथा भी है, परिवार के अंदर जो बातें आती है उसमें भी कैसे अपने आप को परिवार को हैंडल करना है उसका ज्ञान भी श्रीमद् भगवद् गीता में है, एक सामाजिक कथा भी है, समाज के अंदर क्या हालातें थी और समाज को जो रास्ता दिखाना है वो कथा भी उसमें समाहित है, उसका समाधान भी दिया है, एक राष्ट्रीय स्थिति भी है। आज राष्ट्र, हर राष्ट्र, दुनिया के हर राष्ट्र की बात इसमें समाहित है और उसका भी समाधान इसमें दिया हुआ है, और एक विश्व की कथा भी है, यानी जिसको कहा जाए फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल का समाधान श्रीमद् भगवद् गीता में दिया हुआ है। और इसीलिए वर्तमान समय को शायद उन्होंने समाधि स्थिति में देखा था। जिस तरह से आज से 500 साल पूर्व नॉस्ट्रोडेमस हो गए, जिसने 500 साल पूर्व वर्तमान समय को एक गोले में देखा और उसको लिखा, लेकिन इतनी अलंकारिक भाषा में लिखा कि आज भी लोग जब पढ़ते हैं नॉस्ट्रोडेमस की प्रेडिक्शंस समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हां ये बात उन्होंने लिखी थी, तब समझ पाते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि हो गए जिन्होंने विश्व का भविष्य या वर्तमान स्थिति आज से 5000 साल पूर्व देखी थी समाधि अवस्था में, इतने सिद्ध थे। और खाली इस समय की स्थिति का वर्णन नहीं किया, लेकिन समाधान भी दिए। नॉस्ट्रोडेमस ने तो खाली वर्णन किया, समाधान नहीं दे सका। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए कि आज के युग की जो बातें हैं, जो दृश्य है, उन्होंने 5000 साल पूर्व समाधि अवस्था में देखा था और इंसान को कॉशियस किया, सावधान किया, और फिर भी अगर सावधान नहीं हुए और वो बातें आ गई तो उसका समाधान क्या हो सकता है, वो भी उन्होंने बताया गीता के ज्ञान के रूप में। क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल विजडम को ही अप्लाई करना पड़ता है, तभी हम अपनी मनस्थिति को बैलेंस्ड रख सकते हैं, नहीं तो कंप्लीट इंबैलेंस हो जाएगी। और भी हमारे लिए वो संघर्ष विकराल हो जाएगा। इसलिए मनस्थिति को बैलेंस करने की पूरा जो कहा जाए ज्ञान है, विजडम है, वो उन्होंने गीता के ज्ञान के रूप में दिया। अब ये एक मनस्थिति तो कैसे है, ये तो हमने देखा कि अर्जुन की मनस्थिति है, जिस पर एक कंफ्यूज स्टेज में था, और कंफ्यूज स्टेज में होने कारण इतना स्ट्रेसफुल हो गया, नर्वस हो गया कि उसने कहा मुझे युद्ध नहीं करना है, आई डोंट वांट टू फाइट, शस्त्र छोड़ दिए। और तब भगवान ने उसको 18 अध्याय का गीता का ज्ञान दिया। मैं जब कुरुक्षेत्र गई थी तो मैंने वहां पर पूछा कि भगवान को ये ज्ञान देने में अर्जुन को कितना समय लगा था, 18 अध्याय का 700 श्लोक सुनाने में कितना समय लगा होगा। तो मुझे बताया गया कि कई ओपिनियंस है, कोई कहते 2.5 घंटे लगे, कोई कहते हैं 1.5 घंटे लगे, कोई कहते 45 मिनट्स लगे। लेकिन अगर हम 45 मिनट्स भी ले ले तो सोचने की बात है कि ये ज्ञान इतना पावरफुल है कि 45 मिनट्स के अंदर एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को, एक हिम्मतहीन व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सके। आज का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया के अंदर जो 45 मिनट्स के अंदर एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को या एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में जीने वाले व्यक्ति को मोटिवेट कर सके विद इन 45 मिनट्स। सोचो ये ज्ञान कितना, ये विजडम कितना पावरफुल होगा जो विद इन 45 मिनट्स ही वॉज रेडी टू फाइट, है ना? यानी जो जीवन का संघर्ष करते करते थक गया, हिम्मतहीन हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, नर्वस हो गया, गीता का ज्ञान 45 मिनट्स अगर वो सुन ले मोटिवेट हो जाएगा। ये इसकी ताकत है गीता के ज्ञान की। लेकिन क्योंकि किसी ने उसको समझा ही नहीं, अप्लाई नहीं किया, इसलिए आज डिप्रेशन के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और मनुष्य कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको विधि मालूम नहीं है। दूसरी बात जो कहा कि पारिवारिक कंडीशन, आज के युग के अंदर परिवार के झगड़े किस बात को लेकर के होते हैं? जमीन और जायदाद, प्रॉपर्टी, भाई भाई के बीच में हो या कजिन्स के बीच में हो, है ना? दुर्योधन से पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे। जस्ट गिव अस 5 विलेजेस, दैट्स ऑल। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे, जबकि हमारा अधिकार तो आधा आधा पर है, लेकिन फिर भी चलो वी कॉम्प्रोमाइज और खाली 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आज दुनिया के अंदर भी अगर देखा जाए, कजिन्स के बीच में, फर्स्ट कजिन्स के बीच में जो झगड़े होते हैं, और उसमें अगर एक भाई थोड़ा नरम हो, सिद्धांतों पर चलने वाला हो, पॉजिटिविटी को धारण करने वाला हो, और वो नेगेटिव वृत्ति वाले भाइयों से थोड़ी सी जमीन मांग रहे हैं, थोड़ी सी जायदाद मांगते हैं, तो क्या कहते हैं वो लोग? जो होता है कर लो, कोर्ट में चले जाओ, जो होता है कर लो, क्या करना है तेरे को, है ना? क्या जरूरत है तेरे को? जो होता है कर लो, हम तेरे को एक फुट भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? आज कोर्ट में कितने केसेस इसी के ऊपर है और फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। गीता वो समाधान है जो पारिवारिक स्थिति में जो सर्जित ये बातें हैं उसको भी वो समाधान दे देती है, परिवार के झगड़े समाप्त कर सकती है। तीसरा जो कहा, सामाजिक स्थिति। आज समाज के अंदर, उस समय भी दिखाया, समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र थे और जिसका टारगेट धृतराष्ट्र नहीं था, गांधारी नहीं थी, यूथ था, दुर्योधन, दुशासन, 100 कौरव, उनको भड़काता था वो। कहा जाता है दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था, अच्छा था बेचारा, लेकिन उसको अगर बिगाड़ा तो किसने बिगाड़ा? मामा ही हो जाते हैं ना, इसलिए ऐसे मामाओं का गायन है, चाहे कंस मामा के रूप में हो, शकुनी मामा के रूप में हो, है ना? तो इसीलिए कहा उसका टारगेट यूथ था और यूथ को भड़का रहा है। आज के समाज के अंदर भी यूथ की स्थिति क्या है? वो किसके टारगेट पर है? शकुनी मामा के टारगेट पर है। और शकुनी मामा जब उनको भड़काता था, उनको समझ में नहीं आता था। आज के शकुनी मामा भी जिस तरह से प्रलोभन देते हुए आज के यूथ को भड़का रहे हैं, यूथ समझ नहीं पा रहा है। और आज का शकुनी मामा कौन है? कहते शकुनी मामा के पास ऐसी सिद्धि थी कि वो पासे भी उसकी बात सुनते थे, जैसे पासा डालना चाहते थे वो जैसे ही ऑर्डर देते थे वैसे ही पासा चलता था, और इसीलिए कोई उसको जुए के खेल में हरा नहीं सकता था। और तब उन्होंने ये युद्ध का जीवन ही जुआ बना दिया। आज के युग में शकुनी कौन है? मोबाइल। मोबाइल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर कौन से खेल आते हैं? हर फोन के बाद एड आती है रमी की, आती है नहीं आती है? भाई लूडो की, रमी की, पता नहीं कौन से जुए के खेल हर रोज, और उसकी एड देने वाले भी कि भाई आप ये खेल खेलो, इतना जीत जाएंगे, इतना ये हो जाएगा, इतना पता नहीं कमा लेंगे। और उस प्रलोभन में कोई बुजुर्ग तो नहीं आता है? प्रलोभन में कौन आते हैं? यूथ आते हैं ना। तो आज के यूथ की यह स्थिति है। और ये शकुनी मामा ये मोबाइल के अधीन जो हो गया, और ये जुए के खेल में जो चला गया, क्या होता है? बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। वैसे कहा जाता है कि कलयुग को जुए खाने में रहने का, परीक्षित राजा ने ये कहा था कि तू जुए के अड्डे पर रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। लेकिन आज कलयुग हरेक के हाथ में आ गया है, और इसीलिए उनका दिमाग को भ्रमित करना। आज कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितना हैकिंग हो रहा है, कितने प्रकार के हैकर्स हैं जो यूथ को किस तरह से दिशा भ्रमित कर रहे हैं। तो समाज के अंदर क्या हो रहा है? और इसीलिए इस प्रलोभन में जब आ जाते हैं तो जीवन तो बर्बाद होना ही है ना। उनकी जीत तो कभी नहीं हो सकती है, उनकी हार निश्चित है। भले इनिशियल स्टेज में वो जीतते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन उसके बाद तो हार ही हार है। और इसी तरह से आज के समाज के अंदर जो यूथ है, जब सावधान नहीं रहते हैं तो शकुनी मामा के वश होना बहुत स्वाभाविक है। जुए के खेल में जाना बहुत स्वाभाविक है उनके लिए। दुनिया के अंदर जो जुए चलते हैं या जुए के अड्डे होते हैं, वहां तो फिर भी बुजुर्ग लोग भी जाते हैं, लेकिन इस जुए में तो आज का यूथ कितना इन्वॉल्व होता जा रहा है। प्रलोभन में आ करके समझ में ही नहीं आ रहा है उनको क्या करूं क्या नहीं करूं, शॉर्टकट ढूंढता है। और शॉर्टकट में क्या होता है? जीवन का अंत करना पड़ता है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं इस कारण से, क्योंकि जब होश आता है कि इतना पैसा खत्म हो गया, क्या कहेंगे परिवार वालों को, क्या दिखाएंगे समाज को, तो सुसाइड कर लेते हैं। कई ऐसी कहानियां हम सुनते हैं, और कितना एडिक्शन होता जा रहा है इसका। ये एडिक्शन जो है ऐसी चीज है जो शायद उस एडिक्शन से भी बहुत खतरनाक है। इसलिए कहा ऐसे शकुनी मामा से क्या करो? बच के रहो, सावधान, है ना। 5000 साल पहले महर्षि वेदव्यास ने वर्तमान समय को देखा था और इंसान की हालत देखी थी और उसको सावधान करने का प्रयत्न किया था, है ना, लेकिन नहीं समझा, नहीं समझा। इसी तरह अगर देखा जाए, एक राष्ट्र की कथा भी है। राष्ट्र के अंदर राज करना कौन चाहता है? नेत्रहीन। और नेत्रहीन माना ये आंखों से अंधा नहीं, महत्वाकांक्षाओं में अंधा, मोह में अंधा, अभिमान में अंधा, सद्बुद्धि से अंधा, कुबुद्धि के वश है। ऐसे लोग राज करना चाहते हैं, और जब ऐसे लोग राज करना चाहे, उस गद्दी पर बैठना चाहे, तो उस राष्ट्र की हालत क्या होती है वो भी हम जानते हैं कि आज कोरिया में ऐसा ही अंधा एक बैठा है कि नहीं, चाइना में, और भी ऐसे कई राष्ट्र है जहां की स्थिति को हम सभी जानते हैं। इसलिए कहा कि राष्ट्र की कथा भी है कि सावधान किया है हमें महाभारत की कथा के माध्यम से कि देखना कौन बैठना चाहते हैं, समझो परखो, और ऐसे अंधे को कभी भी बिठाना नहीं है, नहीं तो हालत क्या हो जाएगी, हालत क्या होगी, कोई बचेगा नहीं, फिर तो कोई नहीं बचेगा, उस युद्ध में सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सावधान। तो राष्ट्र की कथा भी है और एक वैश्विक कथा भी है। पूरे विश्व की हालत अगर देखा जाए तो आज हर इंसान दिशा भ्रमित है, हर इंसान राह भटका हुआ है, हर इंसान का मन विचलित है, क्योंकि वो गीता में जो बताया गया पाठ है, आत्मा का पाठ ही भूला हुआ है। इसलिए जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो भगवान को इस संसार में आना ही पड़ता है। ये उसने वायदा दिया है कि मैं आता ही हूं, और आकर के क्या करता हूं, इन कारणों से जो अधर्म फैला है, इन कारणों से जो अधर्म फैला हुआ है, उन कारण के बीज को ही समाप्त करता हूं ना? अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना आध्यात्मिकता के माध्यम से करता हूं, और उसके लिए वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि जिस राह पर हम चल रहे हैं वो हमारे लिए, ये ज्ञान एक कंपास का काम करता है, ये एक लाइट का काम करता है जो हमें रास्ता दिखाता है कि ये रास्ता सही है या नहीं है। हमने जो अपने लिए रास्ता चुना वो रास्ता कौन सा है, वो दिशा निर्देश देता है। इसीलिए वर्तमान समय में आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे अध्याय में ही, प्रथम अध्याय का ये दृश्य जो है कि जिस दृश्य के अंदर पांडव भी एकदम नर्वस हो गए, और तभी महाभारत के अंदर ये दृश्य बहुत सुंदर दिखाया कि पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन जब दोनों भगवान से मदद मांगने जाते हैं, तो उस समय भगवान लेटे हुए हैं, तो दुर्योधन सिरहाने जाके बैठ जाता है और अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। दुर्योधन सोचता है भगवान आंख खोलेगा, मुझे पहले देखेंगे, है ना? अब सोचने की बात है कि जब इंसान की आंख खुलती है तो सामने जो होता है वो पहले दिखाई देता है, और देखते ही जब भगवान ने अर्जुन से कहा, अच्छा अर्जुन तुम कब आए, तब दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा भाई तू मांग ले, कोई बात नहीं। तब भगवान ने चॉइस पूछा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? लेकिन एक सेंटेंस जोड़ दिया वहां पर भगवान ने भी, कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा, दैट्स ऑल, है ना। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए। अब शकुनी ने दुर्योधन को सिखा सिखा कर भेजा था, तुम उसी को मांग लेना, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन रॉन्ग चॉइस करता है कि मेरे को तो अक्षौणी की सेना चाहिए। अगर भगवान कुछ करने वाले ही नहीं है, खाली सारथी बनना है, लेकिन ये नहीं समझा कि भगवान गाइडेंस तो दे सकते हैं, मत तो दे सकते हैं, रास्ता तो दिखा सकते हैं। भरोसा नहीं था उसको, विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने गलत चॉइस किया कि मुझे अक्षौणी की सेना चाहिए। आज के इंसान को भी शकुनी सिखाता है, विकिपीडिया के द्वारा, गूगल के द्वारा, व्हाट इज द राइट चॉइस, व्हाट इज द रॉन्ग चॉइस, लेकिन उसके बाद भी आज का इंसान रॉन्ग चॉइस करता है। कहीं कहीं गूगल पर भरोसा नहीं होता है, शायद विश्वास नहीं होता है, पूछता है हर बात, गूगल को पूछता है, गूगल, आजकल तो एलेक्सा, कितना माना 5000 साल पहले वर्तमान समय को इतना एक्यूरेट देखना, ये हमारे ऋषियों की महानता थी। उन्होंने बताया एक कथा के माध्यम से, बी कॉशस, गूगल बता रहा है तो भी रॉन्ग चॉइस करता है मनुष्य। और रॉन्ग चॉइस करने के कारण क्यों, क्योंकि सिरहाने जो बैठा है, सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक, अभिमान में जी रहा है, इतना इगोइस्टिक हो गया है आज का यूथ भी, वो समझता है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, और इसको कोई भी अच्छी राय भी देते हैं तो भी क्या कहते हैं, आई नो एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू टेल मी, कहता है कि नहीं, यू डोंट नीड टू एडवाइज मी, आई डोंट केयर, यस आई डोंट केयर। ये आज के यूथ की मनस्थिति है, इसलिए रॉन्ग चॉइस करता है। अब रॉन्ग चॉइस किया तभी भी उसको समझ नहीं है, कितनी अच्छी बात एक कथा में, एक दृश्य के माध्यम से बताई गई, कि रॉन्ग चॉइस तो किया तभी भी उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये अक्षौणी की सेना में ले रहा हूं, लेकिन ये अक्षौणी की सेना है किसकी, नारायणी सेना है ना। अगर नारायण रथ पर बैठा हो सारथी बन करके, और सामने अक्षौणी की सेना भी दे दिया, चलो ले लो तुम, लेकिन जिस सेना के परिवार को पाला है नारायण ने, जिसके परिवार की जिम्मेवारी ली है, जिनका सस्टेनेंस किया हुआ है, सब कुछ उनका देख करके किया है, अगर उनका मालिक सामने आ जाए तो वो उनके सामने शस्त्र उठाने की भी हिम्मत करेंगे। इतना भी दुर्योधन ने सोचा नहीं, कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं। आज के यूथ में कभी कभी यही अभाव महसूस होता है, इतना रॉन्ग चॉइस कर लेते हैं और उसके बाद सोचते भी नहीं है, और कोई अगर उनको कहता भी है तो इतना तो कॉमन सेंस चलाओ, तो क्या कहते हैं, मैं देख लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, आप चिंता नहीं करो, उसके बाद भी ईगो है कि नहीं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितना कितना सटीक है गीता का ज्ञान, इसलिए आवश्यक है कि गीता हमें सही दिशा दिखाती है, रास्ता दिखाती है, हिम्मत भरती है, शक्ति देती है, और विजडम भी देती है, ज्ञान भी, ज्ञान का प्रकाश देती है। इसलिए आध्यात्मिकता से जो आज लोग अस्वस्थ हो गए हैं, जिसकी मानसिकता अस्वस्थ हो गई है, जिसकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी निल हो गई है, उसके लिए ये गीता का ज्ञान एक ऐसा स्पिरिचुअल विजडम है जो उसको अंदर से एम्पावर करता है. जर्नी फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट. गीता का ज्ञान यही जीवन की जर्नी में सेल्फ एम्पावर करने के लिए सबसे बड़ी ताकत है. जो कहीं से भी किसी व्यक्ति से अगर नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं, कम से कम क्या करो, गीता से तो ले लो, इतनी तो समझ रखो कि उससे तो हम ले ले, है ना. कोई व्यक्ति की नहीं मानना है, वहां अगर अपना ईगो आ जाता है तो कम से कम जो भगवान ने कहा है उसके ऊपर तो विश्वास करके ले लो, है ना. और अर्जुन ने चॉइस किया, भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वो पैरों के पास खड़ा था. ईश्वर की ताकत को समझने के लिए नम्रता चाहिए जीवन में, उस ईश्वर के साथ का अनुभव करने के लिए जीवन में नम्रता चाहिए. जो अपने अहंकार के नशे में है वो भगवान की मदद का अनुभव नहीं कर सकते हैं और जीवन में कभी सही निर्णय नहीं ले सकते हैं. समझने की बात है. इसीलिए अगर सेल्फ एम्पावर होना है तो नम्रता, ह्यूमिलिटी बहुत आवश्यक है, है ना. यह आध्यात्मिकता से ही जीवन में आती है. किसी ने बहुत सही कहा, आज का युग जो है ना इंफॉर्मेशन का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. हर कदम पर आपको इतनी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में Somewhere we have lost knowledge. कहा इंफॉर्मेशन में नॉलेज गुम हो गया है. जो कॉमन सेंस है ना वो गुम हो गई है, नॉलेज गुम हो गया है. और नॉलेज में विजडम गुम हो गई है. और इसीलिए इंफॉर्मेशन में आज विजडम तो है ही नहीं. व्यवहारिकता किसको कहा जाता है, उस व्यवहारिकता को कैसे रिलेशनशिप में अप्लाई करना होता है वो है ही नहीं. इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है जो व्यवहारिकता समाप्त हो गई. रिश्तों में न रिगार्ड है, न संवेदना है, न भावनाएं हैं, कुछ भी नहीं रहा. इंफॉर्मेशन जो भावनाहीन या भावना शून्य हो गई है, भाव शून्य हो गई है. इसलिए कहा इंफॉर्मेशन में वी हैव लॉस्ट नॉलेज और उस नॉलेज में वी हैव लॉस्ट विजडम. तो इंफॉर्मेशन में विजडम तो बिल्कुल गायब हो गई है. इसलिए अब पुनः उस विजडम को लाने की जरूरत है. आज दुनिया में भी इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग किसको हायर करना चाहते हैं, हाई आईक्यू वाले नहीं, लेकिन हाई एसक्यू वाले लोगों को हायर करना चाहते हैं, जिनके पास वैल्यूज है, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, है ना, उनको हायर करना चाहते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस जिसके पास है या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जिसके पास है उसको हायर करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यहां के माहौल को अच्छा रखेंगे. आईक्यू वाला हायर करने के बाद अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन फिक्स में आ जाए, कोलैप्स होने की स्थिति पर आ जाए, क्योंकि वो इगोइस्टिक व्यक्ति कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, तो इसलिए हाई आईक्यू वाले लोगों को नहीं करना चाहते हायर. आज कई बार आप घरों में देखते हैं छोटे बच्चे हाई आईक्यू वाले तो होते हैं, लेकिन उनका ईगो इतना राइज्ड होता है कि वो परिवार में भी फिर किसी की इज्जत नहीं कर सकते हैं, किसी के सम्मान नहीं कर सकते हैं. इसलिए कहा इंफॉर्मेशन के युग में विजडम तो लुप्त हो गया है, इसलिए व्यवहारिकता समाप्त हो गई. तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम विजडम को लाते हैं तो माना व्यवहारिक कुशलता अपने अंदर विकसित करते हैं, और ये आज के समय की पुकार है। उसके लिए दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर भगवान ने अर्जुन को कहा कि जिस तरह से दूसरे अध्याय के लगभग 15वां-18वां श्लोक के आसपास भगवान ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह जल का अपना कोई आकार नहीं है, जिस तरह जल का अपना कोई आकार नहीं, जैसे पात्र में डालो वैसा आकार ले लेता है, ठीक इसी तरह हमारी कॉन्शियसनेस का कोई आकार नहीं है, लेकिन जिस पात्र में आप डालो वैसा आकार ले लेता है। अर्थात पात्र यानी आप पॉजिटिव पात्र में डालो तो पॉजिटिव आकार लेने लगता है, और जैसी कॉन्शियसनेस अगर पॉजिटिव हो गई तो उसके साथ एटीट्यूड, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी दृष्टि सब पॉजिटिव बनने लगती है, जैसे पात्र में डालो। और अगर उसको नेगेटिव पात्र मिल गया तो क्या होगा, हर जगह नेगेटिविटी, और आप उस नेगेटिव कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। देखा है हमने कई जगह, कई लोगों के, कई परिवारों की हालत देखी है, इतना मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ जीना, उनके साथ काम करना, उनको हैंडल करना, इतने वाइल्ड हो जाते हैं बिहेवियर में। कई किस्से आप लोग ने सुने होंगे, कई किस्से आप लोग ने सुने होंगे कि पात्र ही गलत हो गया, और इसीलिए गीता हमें ये सही पात्र देता है ताकि हम अपनी कॉन्शियसनेस को अगर उस पात्र में डालें तो फिर धीरे धीरे सारी चेंजेस हम अपने अंदर महसूस करेंगे। हमारी थिंकिंग बदल जाती है, हमारी वृत्ति बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारी मानसिक स्थिति बदल जाती है, सोच बदलने से सब कुछ बदल जाता है। बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल याद आता है कि एक बार एक कुम्हार माटी ले आया और माटी को रौंदने लगा। उसने सोचा कि इस माटी से मैं चिलम बनाता हूं। रौंद रहा था चिलम बनाने के लिए, उतने में उसकी पत्नी बाहर आई और पूछने लगी, क्या बना रहे हो? स्वाभाविक रीति से तो उसने कहा कि चिलम बना रहा हूं। तो पत्नी ने कहा, अरे गर्मी के दिन आ रहे हैं, चिलम क्यों बना रहे हैं, सुराही बनाओ, कम से कम लोगों को शीतल जल तो मिलेगा गर्मी के दिनों में। तो कुम्हार सोचने लगा और कहा, बात तो सही कर रही है ये, सुराही बना देना चाहिए। तो उसने सोचा, चलो सुराही बना देता हूं, पत्नी जो कहती है सही कहती है। फिर मिट्टी रौंदने लगा सुराही बनाने के हिसाब से। उतने में मिट्टी से आवाज आई, अरे कुमार क्या कर रहा है? तो कुमार ने कहा, सुराही बना रहा। तो मिट्टी ने कहा, अरे तू तो चिलम बना रहा था, का सोचा तो था चिलम बनाना, लेकिन अब सोच बदल गई। तो मिट्टी कहती, तेरी तो सोच बदली, मेरी तो किस्मत बदल गई। चिलम बनाता था तो खुद भी जलता था और दूसरों को भी जलाता था, लेकिन अब सुराही बना रहा है, खुद भी ठंडा रहूंगा, दूसरों को भी ठंडा जल दूंगा। एक सोच किस्मत बदल देता है, और वो सोच के लिए पात्र बहुत जरूरी है कि कौन सा पात्र हम दे रहे हैं। दूसरे अध्याय में जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कितना सटीक ज्ञान दिया है, विजडम दी है उसको कि सर्वप्रथम तो अपना पात्र देख कि तुमने अपनी चेतना को कौन सा पात्र दिया है, क्योंकि वो नर्वस हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया, मोह के वश में आकर के हुआ ना। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम उसकी जागृति ले आई कि तुम सर्वप्रथम देखो कि तुमने पात्र कौन सा लिया है, तुमने अपनी चेतना को किस पात्र में डाला है। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस कि सबसे पहले हम ये देखें, वर्तमान समय में आज देखें, अधिकतर लोगों ने नेगेटिव पात्र ले लिया है और अपनी चेतना को उस नेगेटिव पात्र में डाल दिया, इसलिए उनकी दृष्टि, वृत्ति, स्थिति सब कुछ नेगेटिव है। और वो नेगेटिविटी के कारण वो कितना हंगामा कभी कभी परिवार में मचाते हैं, परिवार के सदस्यों का जीना हराम कर देते हैं, कितना नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान ये सब डिपेंड करता है कि हमने अपने लिए कौन सा पात्र चुना है, कौन सा पात्र। सुख दुख उसी के आधार से प्राप्त होता है, गर्म दिमाग या शीतलता उसी के आधार से प्राप्त होता है। तो देखो पहले तो अपने आप में कि मैंने अपनी चेतना को जल में, जल का अपना कोई आकार नहीं, जैसा पात्र दो उसको लोटे में डालो लोटा का आकार, मटके में डालो मटके का, पतेले में डालो पतेले का आकार, ठीक इसी तरह मैंने अपनी चेतना को कौन से पात्र में डाला है। ज्ञान युक्त पात्र है या मोह के कारण कहीं अज्ञानता का पात्र तो नहीं दे दिया, नेगेटिविटी का पात्र तो नहीं दे दिया। कई लोग हमसे बहस करते हैं कभी कभी, मोह में क्या बुराई है, आज एक मां का बच्चे के लिए मोह तो होता, अरे स्नेह रखो, पॉजिटिविटी स्नेह है। मोह कितना नुकसान करता है, पॉजिटिव व्यक्ति हो जाता है और पॉजिटिव होने के कारण कितना उसके ऊपर बंधन के वो बच्चा भी अंदर में घुटन महसूस करता है, इसीलिए उस घुटन से छूटना चाहता है। तो हमने सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो सारे देख लिए हैं। तो मान अपमान आप पॉजिटिविटी को धारण करो, उस पात्र को लो, आपको सम्मान मिलेगा, नहीं तो बात बात में अपमान मिलेगा, अपमान महसूस होगा। तो सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान निंदा स्तुति ये सब का आधार क्या है, कौन सा पात्र लिया है, देखो चेक करो। आत्मा के ज्ञान में सबसे पहली बात भगवान ने अर्जुन को यही बताई, और ये आवश्यकता है, इसलिए का वर्तमान परिपेक्ष में ये चेक करना, ये जागृति लाना, और ये जागृति धीरे धीरे आ रही है लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों को पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरों को ऐसा करना चाहिए, दूसरों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, दूसरों को हम बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं लेकिन पहले अपने पात्र को तो चेक करें कि मैंने अपनी मानसिकता को किस पात्र में डाला है, क्या पॉजिटिव है। और इसीलिए कहा भगवान ने कि पॉजिटिव पात्र में डालने के लिए स्वधर्म को पहचानो, बहुत सुंदर बात कही है। स्वधर्म किसको कहा जाता है, लोगों ने समझा कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो उसको स्वधर्म की जागृति दिलाने के लिए क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे थे। भगवान कभी भी ग्रॉस लेवल पर बात नहीं करते, सारी गीता बहुत सूक्ष्म स्तर पर है, ग्रॉस लेवल पर नहीं है, और इसीलिए क्षत्रिय धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कोई जाति वेद उसमें नहीं बांटते हैं किसी को, धर्म जाति उसके अंदर नहीं बांटते हैं, न कभी भगवान ने ऐसा किया, उसका ज्ञान तो यूनिवर्सल है। इसलिए आज गीता को समझने के लिए हर धर्म वालों ने प्रयत्न किए, गीता मां बन गई सबकी, क्योंकि बाकी सभी तो दिव्य आत्माओं की वाणी है, महान आत्माओं की वाणी है, भगवान की वाणी नहीं, सिर्फ एक गीता सारे वर्ल्ड के अंदर एक गीता ही है जिसमें भगवान वाज है, है ना। तो इसीलिए सब धर्मों वालों ने उसको समझना चाह कि आखिर भी गीता हमको क्या कहती है, हमारे लिए भगवान ने क्या डायरेक्शन दिए। तो हर धर्म वाले उसको स्टडी करना चाहते क्योंकि उसमें प्योर प्योर विजडम है। स्वधर्म की बात जब कही तो ये नहीं कहा कि तू क्षत्रिय धर्म है इसलिए तुम्हें ये युद्ध करना है, नहीं तो क्या गीता का ज्ञान खाली क्षत्रियों के लिए हो जाएगा? नहीं, गीता का ज्ञान सारी मानव जाति के लिए। तो मानव जाति का गुण धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है? सद्गुण ये हमारा स्वधर्म है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मानव होने के नाते मानवीयता किसको कहा जाता है, वो सद्गुण क्या है, वो गुण धर्म कौन से हैं, उसको जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहा है कि स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। दूसरे अध्याय में पर धर्म माना, ये सद्गुण से पर क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ, ये सब पर धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है, ये पर धर्म दुख का कारण है। जब तुम ये नेगेटिव पात्र दे देते हो तब तुम दुख का अनुभव करते हो जीवन में। अगर ये सब स्वधर्म क्या, ये पॉजिटिव पात्र को लेकर के चलो तो जीवन में यही सुख का आधार है, ये सुख के आधार को समझो। कितनी सुंदर बात कही है, एक एक कदम पर जब ये पढ़ते हैं ना, इतना सुंदर गीता का ज्ञान है कि सचमुच आज मनुष्य अगर इसके आधार पर उसको अप्लाई करना शुरू करे जीवन में तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकल सकता है, उसका उसकी व्यवहारिक कुशलता बढ़ जाएगी। इसलिए कहा कि अर्जुन मैं तुम्हें योग सिखाता हूं। एंड व्हाट इज योग? आज की दुनिया में योग योगा हो गया है ना, और योगा माना एक्सरसाइज करो, एक आसन लगाओ। लेकिन भगवान ने अर्जुन को योग सिखाया, हर अध्याय जहां योग है कहीं पर भी आसन नहीं सिखाए, कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई, प्योर योग सिखाया। चाहे सांख्य योग हो, बुद्धि योग हो, कर्म योग हो, ध्यान योग है, सन्यास योग, सब योग सिखाए उसको। और सब योग सिखा करके उसकी जो आंतरिकता के अंदर जो चेंज ले आए भगवान, उसके सोच में जो बदलाव ले आए, तो कहा योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन। आज व्यक्ति का अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार नहीं है, तो जहां स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त करना, इसका नाम है योग, इसका नाम है योग। आज व्यक्ति कितनी भी आसन लगा दे, एक्सरसाइज कर ले, लेकिन अगर उसने अपनी मानसिकता को चेंज नहीं किया, नेगेटिव रहा, तो उस योगा का असर कितना होगा फिजिकल बॉडी के ऊपर। क्योंकि जब कहा जाता है कि माइंड का ही सारा बॉडी से कनेक्शन है, 70% ऑफ द डिजीज आर ड्यू टू साइकोसोमेटिक रीजंस, तो जब मन का ही सारा शरीर के साथ संबंध है, इसीलिए उसको आसन एक्सरसाइज नहीं सिखाई, कहा तुम अपनी मानसिकता को पॉजिटिव करो, पॉजिटिव पात्र दो, स्वधर्म के आधार पर जियो, अपनी इंद्रियों को सेल्फ डिसिप्लिन करो, उसके बाद तुम देखो तुम्हें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो इतना टाइम लोग दे रहे हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जागृति की कमी है, है ना। पहले के जमाने में इतने बीमारियां कहां होती थी, मुझे बताओ कहां होती थी? कौन से लोग रोज मॉर्निंग पैदल करने निकल पड़ते थे? जॉगिंग करने निकल पड़ते थे, जिम होते थे, जिम 50 साल पहले थे क्या? फिर भी व्यक्ति हेल्दी था। कैसे हेल्दी था? सद्गुण का जो पात्र उसने अपनाया था, व्यवहारिक कुशलता जो उसके आधार पर थी, कार्मिक कुशलता जो थी, इसलिए कहा योग के द्वारा कर्म कुशल होता है। एफिशिएंसी इन आवर एक्शंस, इफेक्टिवनेस, हम इतने इफेक्टिव हो जाते हैं अपने कर्म के अंदर कि वो ये सारी बीमारियों की जड़ नेगेटिव पात्रता है, नेगेटिव मानसिकता है, और उसी के कारण ये सब कुछ आज मनुष्य जो भोग रहा है, कर्मों का फल भोगता है ना। एक तरफ ये भी मानते हैं कर्म का फल व्यक्ति को छोड़ता नहीं, अगर नेगेटिव कर्म करते चलो और फिर जिम करो क्या होगा? क्या बीमारी से छूट जाएगा? कभी नहीं छूट सकता है। इसलिए आज देखो पतले लोग हैं उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है। भाई वो तो रोज करता है एक्सरसाइज, फिर उसको हार्ट अटैक क्यों आना चाहिए? रोज जिम कर रहा था फिर उसको हार्ट अटैक क्यों आना चाहिए? आता है कि नहीं आता है? बस इसलिए सब बातें यहां से शुरू होती है और यहां से उसके कर्म में ट्रांसेंड होती है। और कर्म व्यक्ति के अच्छे हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर उसके अंदर है, कर्म के ऊपर डिसिप्लिन है, कर्म में अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार है, फिर उसको अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलना है। इसीलिए श्रीमद् भगवद् गीता को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं लोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। माना ज्ञान को अप्लाई करो, कहां? कर्म में। कर्म में अप्लाई करो तो आप कर्म योगी हो जाएंगे, और कर्म योगी हो जाएंगे तो भक्ति योग तो अपने आप है। ईश्वर के साथ आपको खास बैठ के ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते आप ईश्वर की स्मृति में सहज रह सकते हैं, है ना। और इसीलिए जीवन के संघर्ष में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आजकल मनुष्य का जीवन इसीलिए ज्यादा संघर्षमय हो गया है, कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड, कमजोर दिमाग उसकी उपज है प्रॉब्लम्स की। तो अगर मानसिक रूप से व्यक्ति पॉजिटिव अगर हो जाए आधी प्रॉब्लम्स तो खत्म हो जाएगी कि नहीं होंगी? एफिशिएंसी उसके कर्म में आ जाएंगी, व्यवहारिक कुशलता उसकी हो जाएगी, जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन होने कारण से खाने पीने उठने बैठने हर बात में एक संयम जीवन में जब आ जाता है, आज न खाने का संयम है, न उठने का संयम है, न सोने का संयम है, किसी बात का संयम है, डिसिप्लिन है, इसीलिए लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। तो गीता हमें जीवन में प्रॉब्लम मुक्त कैसे बनना है, एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, कर्म योगी जीवन कैसे अपना बनाना है, इजी योगी, कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए योग करो, है ना, सहजता से। और उस आधार से आप देखो तो जीवन के अंदर कितने ऊंचाई को आप प्राप्त कर सकते हैं, हर बात में सफलता का अनुभव कर सकते हैं, यही भगवान ने कहा। और भगवान इस समय आकर के यही कह रहे हैं, इसीलिए भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, मैं धर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए संसार में आता हूं। लेकिन आज के युग में अगर श्री कृष्ण के रूप में आए तो कौन उसको कार्य करने देंगे? या सेल्फी के लिए जरूर पहुंच जाएंगे, कार्य तो नहीं करने देंगे, उसके कार्य में मदद रूप भी नहीं बनेंगे, मेरे को सेल्फी खींचना है बस, कुछ भी हो जाए उसको जीने देंगे? इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जो मूढ़मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला, मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण कर लेता है। सेल्फी निकालने नहीं पहुंचता लेकिन शरण में आ जाता है, और जो ईश्वर की शरण में चला जाता उसका तो कहना ही क्या। फिर तो इसीलिए कहा अति साधारण रूप कौन सा है? मनुष्य नर स्वरूप। इसलिए नारायण का वो नर स्वरूप कलयुग में, क्योंकि अनेक पुनर्जन्म लेकर के जब नारायण भी नर स्वरूप में आते हैं तो परमात्मा उस नर स्वरूप में अवतरित होते हैं, अर्थात उस नारायण के नर स्वरूप में अवतरित होते हैं और अपना कार्य करते हैं। इसलिए लोग पहचान नहीं सकते हैं, कोटों में कोई कोई में भी कोई पहचानते हैं कि वो श्री कृष्ण की आत्मा कौन है जो नर स्वरूप में है। तभी कहा जाता नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, अर्थात उसी नर को सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करते नर से नारायण या श्री कृष्ण उनको बनाते हैं। इसलिए नारायण का बचपन का स्वरूप कौन सा है? श्री कृष्ण का स्वरूप है। तभी तो एक भजन गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नमो वासुदेव, हमेशा गाते रहे, अर्थ समझा नहीं। श्री कृष्ण जिसको बचपन में कहा उसका बचपन का बाल स्वरूप श्री कृष्ण का है, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना तो गोविंद कहा, जब रास लीला रचाई तो हरे मुरारी कहा जिसको, और वही जब राजगद्दी पर बैठता है तो उसको नाथ नारायण कहा, वही वासुदेव। जिसके एक ही जीवन के ये चारों अवस्था है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण नम वासुदेव, उसके सामने मैं झुकता हूं जो खुद नाथ नारायण बनता है। तो बचपन का स्वरूप श्री कृष्ण का अगर द्वापर में हो और नाथ नारायण सतयुग में हो, ये संभव है? ये संभव है? नाथ नारायण सतयुग में है इसका प्रमाण कि हमेशा सत्य नारायण या सूर्य नारायण कहा जाता है, जो सतयुग का राज्यकर्ता सूर्यवंशी था नारायण, तो उसका बचपन का स्वरूप द्वापर में कैसे हो सकता है? सोचने की बात है ना? तो इसीलिए ये भजन गाते रहे लेकिन किसी ने अर्थ नहीं समझाया कि वो एक ही समय की बात है, ये चारों अवस्था एक ही समय के हैं, लेकिन वो जब साधारण नर स्वरूप में आ जाता है श्री कृष्ण नारायण नर स्वरूप में आ जाता है तब परमात्मा उसी में अवतरण करके ये गीता का ज्ञान पुनः दे करके अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना कराते हैं और करा करके उस सत युग की दुनिया को ले आते हैं, है ना? इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण वाले स्वरूप में नहीं, लेकिन वो आत्मा श्री कृष्ण की जब नर स्वरूप में आई तब अवतरित करते हैं। इसलिए सारी संपूर्ण भगवत गीता के अंदर कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं मिलेगा, भगवान उवाच जरूर मिलेगा कि उसके माध्यम से बोलने वाले कौन है? भगवान, है ना? भगवान बोलते हैं। लेकिन हां ये जरूर गलती कर दी हमने, जिस तरह से दुनिया के अंदर तीन राम मशहूर है, तीन राम मशहूर है ना, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम गटगट में लेटा, आत्मा को भी राम कहते आत्मा राम, तो दूजा राम गटगट में लेटा, तीसरा राम जगत से न्यारा, परमात्मा को भी राम कहा जाता है। अब ये तीनों राम की कहानी रामायण में मिक्स कर दी, रामायण, राम आयन माना, आयन माना जर्नी, द जर्नी ऑफ राम। अब तीनों की जर्नी है, त्रेता युग वाले दशरथ के बेटे राम की भी एक जर्नी है, आत्मा राम की भी एक जर्नी है, और परमात्मा राम भी जब इस संसार में अवतरित होते तो उसकी भी एक जर्नी है। है कि नहीं? तो तीनों राम की जर्नियों को मिक्स करके एक रामायण बन गया। इसलिए कई बार लोग समझते नहीं हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, संभव हो सकता है, कई प्रश्न इसीलिए। लेकिन कहा जाता है इसमें प्रश्न नहीं करना चाहता करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न किया तो संशय बुद्धि विनश्यन्ति। इसलिए लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, प्रश्न नहीं करना है, संशय हो जाता है, नहीं तो संशय बुद्धि विनश्यन्ति, श्राप मिल जाएगा। इसलिए लोगों ने प्रश्न ही नहीं किया। कितने प्रश्न मन में आते होंगे, है ना? ठीक इसी तरह कृष्ण भी दो है, एक श्री कृष्ण जो सतयुग का राजकुमार, नारायण का बचपन का स्वरूप श्री कृष्ण। कृष्ण का शाब्दिक अर्थ अगर लिया जाए तो आकृष्ट करने वाला, आकृष्ट माना आकर्षित करने वाला, आकर्षणमय मूरत जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट करने वाली सिर्फ दो ही मूरत है जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करती है, एक श्री कृष्ण का अगर फोटो भी देख ले तो लगता है कितना आकर्षणमय मूरत है ना? और दूसरा परमात्मा को भी कहते हैं आकर्षणमय मूरत वाला। और उसका प्रमाण है, उसका प्रमाण है कि शिव के साथ ये महिमा गाई जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है वही, हाँ, शिवम यानी कल्याणकारी, और जो कल्याणकारी है वो आकर्षणमय है। जो सत्य है, जो कल्याणकारी है, वो आकर्षण वाली है। इसीलिए ईश्वर को भी कहा आकर्षणमय मूरत। तो शिव को भी यही कहते सत्यम शिवम सुंदरम, जो सबसे आकर्षणमय मूरत है। और इसीलिए दोनों आकर्षण वाली मूरत, लाइट भी हमेशा आकर्षित करती है। अंधकार हो तो लाइट जहां से आती है वहां अपने आप ध्यान जाता है कहां से आ रही है। तो इसी तरह अज्ञानता के अंधकार के बीच जब ज्ञान का प्रकाश आता है ना, तो वो भी आकृष्ट करता है कहां से आ रहा है। और इसीलिए वो परमात्मा जब गीता का ज्ञान दे करके वर्तमान समय के मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करके एक सही पात्र देता है, और इस पात्र में आप अपनी मानसिकता को डालो, सरेंडर करो। इसलिए दिखाया कि अर्जुन जब घुटना टेक देता है और भगवान को विनती करता है कि आप अभी मुझे गाइड करो, मुझे कुछ नहीं सूझता है, सरेंडर कर दिया अपने आप को। तो इस तरह से जब अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं तब भगवान फिर टेक ओवर करता है और गाइड करना शुरू करता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
अच्छा।
शासन चलाए कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए।